server555.com audio production. The prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer.
Part 2.
The Merchant. एक अकलमंद ताजिर, दो मुंह दाढ़ी, बेहतरीन घोड़ा, रंग बिरंगा लिबास, आला टोपी, शानदार जूते, ये था इस ताजिर का हुलिया। बेहतरीन मशवरे, मगर जिनका मकसद सिर्फ अपना मुफाद। उसके शानदार वजाकता से कहां कोई ये जान सकता था कि इस पर तो कर्ज चढ़ा हुआ है। द क्लर्क। इल्म के लिए वक्फ, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा, वो और उसका घोड़ा दोनों पतले दुबले, पैसे और खुश लिबासी से ज्यादा किताबों का ख्वाहिशमंद, इसीलिए फटे पुराने लिबास में, क्योंकि पैसे कमाने की ख्वाहिश ही नहीं। अपने अजीजों से रकम लेता, उन्हें दुआएं देता, और वो रकम अपने ऊपर लगाने के बजाय किताबों और इल्म पर खर्च कर देता। बहुत कम बात करना उसकी आदत थी, मगर ये कम बात संजीदा और बेहतरीन होती, जिसका लबे लुबाब इखलाकियात ही होता। द सर्जेंट ऑफ लॉ, द मैन ऑफ लॉ। सबसे नुमाया और मोजिस कानून दान, जो कि जज भी था, चूंकि वो इंतहाई जहीन था, कानून का मुकम्मल इल्म था और कानूनी मशवरे फौरी तौर पर दे देता था, इसीलिए लोग मशवरे के लिए उसे रकम देते। किंग विलियम के दौर के मुकदमे उससे जुबानी सुन लीजिए। लिबास शोख और कई रंगों से मिलकर बना हुआ। द फ्रैंकलिन। बहुत अहम इंसान, खुद एतमाद, सफेद दाढ़ी वाला और हमेशा खुश रहने वाला पटवारी। उसका फलसफा ये था कि असल जिंदगी तो मामूली चीजों से खुशी हासिल करने में है। ये शराब के साथ रोटी खाता। शराब का जखीरा, मछलियां, सेहतमंद तीतर और गोश्त हर हर मौसम में उसके घर में दूसरी तमाम अशिया के साथ मौजूद रहते, और खाना तो हर वक्त दस्तियाब था। ये गवर्नर भी था और अकाउंटेंट भी, और मुख्तलिफ मजालिस में बतौर सदर भी शिरकत करता। द फाइव गिल्डमैन, द फाइव मेंबर्स ऑफ ए गिल्ड। पांच खुशहाल इंसान, जिनमें सिलाई का सामान बेचने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, जुलाहा, रंगरेज और एक वो जो कपड़े पर काम करता था शामिल थे। साफ शफाफ और एक तरह के कपड़े पहने हुए, उनको जहीन होने की वजह से बुलंद मकाम मिलना चाहिए था। उनके घर वाले उनसे इसलिए खुश थे कि उनके पास काफी जानवर और वो रकम भी थी जो कि किराए से हासिल होती थी। द कुक। मुख्तलिफ खाने और यखनी पकाने और चीजें भूनने के लिए बावर्ची उनके हमराह था, जो कबाब और खाना पकाता और शराब के मुतालिक वसीह इल्म रखता था। मगर ये बात अफसोस की थी कि उसकी पिंडली पर सरतान का फोड़ा था। द शिपमैन। मगरबी मुल्क में रहने वाला बहरी जहाज का कप्तान, जो कि एक अच्छा इंसान था और बहुत सेहतमंद घोड़े पर सवारी करता था। लड़ाई में फतह हासिल करने के बाद वो उस आदमी को समंदर के रास्ते ही वापस भिजवाता। जहां तक उसकी मालूमात का ताल्लुक है, वो इसमें बेमिसाल था, यानी जवार भाटा कब आएगा और क्या क्या खतरात हो सकते हैं। जहाज रानी के दीगर उलूम, बंदरगाहों की मालूमात, चांद की मालूमात और हालात हाजरा में भी उसका कोई सानी नहीं था। वो अपनी जिम्मेदारियों में बेहद संजीदा और मोहतात था। मजीद ये कि वो तमाम समंदरों और उनकी बंदरगाहों को बखूबी जानता था। द डॉक्टर ऑफ फिजिक। एक इंतहाई कामयाब डॉक्टर भी हमारे साथ था, बल्कि शायद दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर। वो तिब और जराहत के साथ सितारों के इल्म से भी वाकिफ था। डॉक्टरी दवाई इल्म नजूम से बेहतरीन वक्त पर देता और हर मर्ज की वजह, चाहे वो गर्मी, सर्दी, खुश्की या नमी की वजह से हो, इस कामयाब तबीब को मालूम थी। तिब में वो कोई नया नहीं आया था और मरीजों को देखने और दवाई देने के लिए हर दम तैयार रहता था। पैसों के बारे में कंजूस और बाइबल का मुताला ना करने वाला, नीले और सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस, बेहद मुनासिब जूद हजम खाना खाता जिसमें कोई गलत शय शामिल नहीं होती थी। जब वबा फूटी तो उसने खूब कमाया और खूब जमा किया। सोना उसे बेहद पसंद था क्योंकि वो सोने को मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल कर सकता था। द वाइफ ऑफ बैथ कपड़े बनाने में बेहद माहिर, थोड़ी कम सुनने वाली, बैथ की रहायशी सबसे ज्यादा खैरात देने वाली और इस कदर ज्यादा कि अगर कोई उससे ज्यादा दे दे तो नाराज हो जाती। खूबसूरत मोजे, तकरीबन 10 पाउंड वजन का सर पर बंधा हुआ कपड़ा जो अच्छा था, जो इतवार को पहना जाता। इतना खूबसूरत चेहरा कि जिसके 5 शोहर और दूसरे कई लोगों से ताल्लुकात हों, मगर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। सफर की इतनी शौकीन के कई मुल्कों की सैर की, रोम गई और कई दूसरे इलाकों में भी। घोड़े पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली और चूंकि मोहब्बत के मामलात को बखूबी हल कर चुकी थी, लिहाजा ऐसे मामलात और बीमारियों को हल कर लेती। दी पार्सन किरदार के हवाले से बेहद अमीर मगर गांव से ताल्लुक रखने वाला गरीब पादरी, अच्छे किरदार का पढ़ा लिखा मजहबी किस्म का आदमी जो बेलौस मुकद्दस इंजील की तबलीग करता और इलाके के लोगों को तालीम देता। बेहद खूबियों का मालिक, यानी तकालीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने वाला, कभी किसी से बदतमीजी ना करने वाला। न सिर्फ गिरजे की रकम बल्कि अपनी जाती भी लोगों को इमदाद के तौर पर देने वाला। कनात उसका खासा था। एक बड़े गांव का पादरी होने के बावजूद सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करता और बीमारों की तीमारदारी हाथ में छड़ी पकड़े पैदल जाकर करता। लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल, वो इंजील से मिसालें देता और कहता कि पहले खुद अमल करो और फिर दूसरों को कहो, और अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहे का क्या कहा जा सकता है। अपने फायदे के बजाय दूसरों का ख्याल किया जाए। ये गलत बात है कि भेड़ें साफ हों और उनका रखवाला मैला कुचैला। किसी तंजीम के साथ काम करने के बजाय वो अपनी पालतू भेड़ों की हिफाजत करता। नेक होने के बावजूद गुनाहगारों से नफरत उसका शेवा नहीं था, ताकि वो भी नेकी के रास्ते पर आ जाएं। वो बेहतरीन पादरी था जो अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि जमीर के लिए काम करता था और गलत बात की कभी हिमायत नहीं करता था, चाहे वो कोई अमीर कहे या गरीब। दी प्लाउमैन उसका बहादुर और मेहनती काश्तकार भाई उसके साथ था, अच्छे और बुरे हालात में हरदम खुदा का शुक्र करने वाला, मोहब्बत करने वाला इंसान, अपने हमसायों को खुशियां देने वाला और बगैर उजरत के उनके काम कर देने वाला। वो अपने मुनाफे से पूरे पूरे टैक्स अदा करता और घोड़ों पर मजदूरों के लिबास में सफर करता। बाकी तमाम लोगों में रीव, मिलर, पार्टनर, समनर और म्यूनिसिपल शामिल थे। द मिलर हमेशा गंदे मजाक करने वाला, लंबा चौड़ा और बदजुबान, मजबूत जिस्म का हामिल, एक बहादुर और गवार इंसान। मिलर जिसने हर घर के दरवाजे तोड़े और उसके जीते हुए एजाजात उसके साथ साथ रहते। उसकी दाढ़ी की मिसाल सुर्ख लोमड़ी की तरह और चौड़ी थी। तलवार उसके साथ रहती, नाक के ऊपर तिल जहां बाल थे, सफेद कोट में मलबूस गंदुम चुराने वाला और उसकी बेहद ज्यादा कीमत वसूल करने वाला। मौसीकी इतनी अच्छी बजानी आती थी कि तमाम गांव घर से बाहर आकर उसे सुनता। मैंसिपल खरीदो फरोख्त में उसका कोई सानी ना था, चाहे चीजें कीमतन खरीदनी होती या उधार। अगरचे कम पढ़ा लिखा मगर पढ़े लिखों से बहुत आगे। इसको कहते हैं अल्लाह की इनायत। उसके पास इतनी रकम थी कि बगैर उधार लिए अच्छी जिंदगी गुजारे, मगर दूसरों की इमदाद करने के लिए खुद कम खर्च जिंदगी बसर करता। द रीव जिस्म पर सफेद धब्बों वाला, पतला दुबला क्लीन शेव, लंबी और छड़ी की मानिंद पतली टांगों वाला मनसबदार, जिसके पास गंदुम वाफिर मिकदार में थी, क्योंकि उसे बुआई के तरीके भी मालूम थे और मौसमों से भी अच्छी तरह आगाही थी। अपने मालिक के तमाम जानवर और पोल्ट्री फार्म और स्टोर की निगरानी वही करता था। वो ये हिसाब किताब उस वक्त से कर रहा था जब उसके मालिक की उम्र सिर्फ 20 साल थी। तमाम लोग ही उसकी चालाकी और अय्यारी से आगाह थे और उसकी गलती नहीं निकाल सकते थे, बल्कि उससे खौफजदा थे। उसने अपने मालिक की दौलत से कभी अय्यारी से और कभी खुश करके और चोरी छुपे बेहद दौलत जमा कर ली थी। सायादार सरसब्ज जगह में उसने बेहद खूबसूरत रहायशगाह बनाई हुई थी। नीले रंग के कोट में मलबूस वो एक पुरानी तलवार रखता था और हमारे ग्रुप में सबसे पीछे चलने वाला। द समनर छोटी आंखों मासूम चेहरे वाला जिसके मुंह पर दाने थे। ये समनर हमारे साथ था जो किसी फुर्तीली चिड़िया की तरह हरकत करता था, चेहरा बच्चों को खौफजदा कर देने वाला। कोई खुराक दवाई या मरहम उसके सफेद दागों या चेहरे के दानों को खत्म ना कर सके। प्याज लहसुन और इसी तरह की सब्जियों को खाने वाला और सुर्ख रंग की शराब पीकर लातीनी जुबान बोलने और शराब के नशे में पागलों की हद तक शोर मचाने वाला। तमाम दिन अदालती गुफ्तगू सुनने वाला और इसी वजह से चंद अदालती बातों को कह सकने वाला। रहमदिल और शरीफ किस्म का बदमाश। एक शराब की बोतल के लिए वो इजाजत दे सकता था कि दूसरा शख्स उसकी बीवी को पूरा साल रख सकता था। वो लोगों से कहता कि अगर ईसाई हकूक से तुम्हें महरूम कर भी दिया जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि रूह पैसे से अपनी बचत कर लेगी। मेरी राय में वो गलत कहता है, क्योंकि हर जुर्म करने वाले को इस बात से खौफजदा होना चाहिए कि वो ईसाई हक से महरूम कर दिया जाएगा। जिस तरह तौबा उसे बचा सकती है, उसी तरह ये बदुआ उसे तबाह भी कर सकती है। वो पादरी के तमाम हलके के लोगों के राज जानता और उनको मशवरे भी देता और इस तरह उनको अपने काबू में रखता। उसके सर पर एक बड़ा हार भी होता था। द पार्टनर मोम की तरह पीले बालों वाला जो के कंधों पर फैले हुए थे। उसके हमराह उसका एक दोस्त पार्टनर भी था जो रोम की अदालत से ताल्लुक रखता था। मैं प्यार के काबिल हूँ, ये था गाना जो वो बुलंद आवाज से गाता था। वो बगैर दाढ़ी के था, उसके बाल बिखरे हुए थे क्योंकि उसने सर पर कुछ भी ना पहना हुआ था। शायद वो ख्याल करता था कि वो जदीद अंदाज में सफर कर रहा है। चमकदार आंखें, गोद में पड़ा हुआ बटुआ, आवाज इंतहाई बारीक बिल्कुल बकरी की तरह की, स्पार्ट चेहरा। दूर दूर तक उसकी तरह का कोई माहिर पार्टनर ना था। वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें अपने पास रखता जो उसे लोगों को ठगने में मदद देती। वो गरीबों को भी अपनी चापलूसी की बातों से ठगता और बेहद कमाई कर लेता। वो एक बेहतरीन पादरी इसलिए था क्योंकि उसे इल्म था कि कहानी को किस तरह पढ़ना है। वो तबलीग करना जानता था और इतने अच्छे अंदाज में मौके की मुनासबत से बुलंद आवाज में गाता कि लोगों से ज्यादा रकम हासिल कर लेता। चौसर्स विंडिकेशन ऑफ हिज रियलिज्म میں نے گزشتہ سطور میں آپ کو خلاصے میں یعنی مختصراً یہ بتایا کہ یہ سب لوگ جو ٹیبرٹس رائے میں جمع ہوئے تھے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی تعداد، معاشرے میں ان کا مقام، رہن سہن یعنی طرز زندگی کیا تھا۔ مگر اب میں بتاؤں گا یہ کہ اس رائے میں آنے کے بعد رات کو کیا کچھ کیا اور رات کیسے گزاری، اور زیارت کے متعلق دیگر تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا۔ دی ہوسٹ، میزبان کی مہمانداری سے ہم بہت ہی خوش ہوئے۔ بہترین کھانا پیش کیا گیا، بہت تیز شراب ہم نے نوش کی۔ ہمارا میزبان حال میں تقریبات کروانے کا ماہر تھا، اچھے انسان کی خوبیاں رکھنے والا، خوش مزاج، چمکدار آنکھوں والا، صحت مند، اچھا انسان، اچھا شہری، سیدھا مگر عقل مند، صاف اور کھری بات کرنے والا۔ جب ہم نے کھانا ختم کیا تو اس نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں جن سے ہم خوش ہوئے اور ایسا ہی جواب دیا۔ پھر اس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور بولا کہ ہمارا گروپ ان سب سے اچھے لوگوں کا گروپ ہے جو کہ اس نے سال بھر میں دیکھے ہیں، اور اس کی سرائے میں آنے والے بہترین لوگ۔ مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے، یہ ایک بہت اچھا اور خوشی کا خیال ہے جس سے نہ صرف آپ لوگ خوش ہوں گے بلکہ یہ خوشی بغیر کسی رقم کے خرچ کے ہوگی، یعنی اس میں کسی قسم کے کوئی اخراجات نہ ہیں۔ خدا آپ کو اپنی منزل مقصود یعنی کینٹربری حفاظت سے پہنچائے اور آپ کو اس نیکی کا اجر سلا دے۔ آپ لوگ اپنی منزل مقصود پر بحفاظت پہنچیں اور آپ کا یہ سفر قبول ہو۔ تو اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سفر کو بوریت سے بچانے کے لیے کہانی ایک دوسرے کو سنائیں، اس سے راستہ خوشگوار کٹے گا۔ ہمارے سفر کا ہر ساتھی دو کہانیاں کینٹربری جاتے ہوئے اور اسی طرح دو واپسی پر سنائے، کہانیاں ان باتوں کی جو اس کی زندگی سے متعلقہ ہوں، اہم واقعات، اچھے واقعات، اور وہ جس کی کہانی بامقصد ہوگی، سب سے زیادہ اچھی ہوگی، پسند آئے گی سب کو، اس شخص کا انعام یہ ہوگا کہ دوسرے اس کو اپنے خرچ پر کھانا کھلائیں گے۔ چونکہ تجویز میری ہے لہٰذا اسے کامیاب بنانے کے لیے میں اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ سفر میں شامل ہو رہا ہوں، اور جو اس بات کو نہ مانے گا اس پر جرمانے کے طور پر دوسروں کے سفر کا خرچ ڈال دیا جائے گا۔ سب نے اس کی تجویز کو پسند کیا، تائید کی اور کہا کہ کہانیاں سننے کے بعد وہی بتائے گا کہ سب سے اچھی کہانی کس کی تھی۔ اور ہاں، اب راستے میں خوراک کا بندوبست بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس بات کی حامی کے بعد ہم سونے چلے گئے اور صبح کھانے کے بعد کینٹربری کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میزبان نے رات کی بات یاد کرائی اور کہا کہ اب کہانی سنانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور جو اس بات سے متفق نہ ہو وہ جرمانہ ادا کرے۔ اچھی کہانی، چھوٹی سی کہانی، جناب نائٹ، عالی جناب آپ شروع کریں اور دوسرے لوگ قریب آ جائیں۔ نائٹ سے ہر آدمی خوش تھا اور اسے کہانی سنانے کا وعدہ وفا کرنا تھا، چنانچہ اس نے کہانی سنانے کا آغاز کیا۔ آؤ سفر شروع کریں اور کہانی کی ابتدا کریں۔ چنانچہ سفر کا آغاز ہوا اور اس نے کہانی سنانی شروع کی۔ پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com